अध्याय 63 याद रखने की बातें। त्राणकर्ता ने हर युग के अनुयायियों के लाभ के लिए अपने शिष्यों को आदेश दिए थे। उसके ख्याल में वे लोग थे जो अंत के समय रहते हैं, जब उसने कहा था, चौकस रहो। हमारा कर्तव्य है कि अपने अपने हृदयों में पवित्र आत्मा के सद्गुणों को प्रिय वस्तु जैसे पोषण करें। वह सूक्ष्म घड़ी हमारे ठीक सामने है। उसके दुखों व संकटों का सामना करने और उसके कर्तव्यों का पालन करने में दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, पर हमारी विजय शान के साथ होगी। जागने वाली, प्रार्थना करने वाली तथा विश्वास लाने वाली आत्माओं में से एक भी शत्रु के जाल में ना फंसेगी। भाइयों, जिन पर परमेश्वर के वचन के सत्य खोल दिए गए हैं, आप संसार के इतिहास के अंतिम दृश्य में कौन सा पाठ अदा करेंगे? क्या आप उस भारी तैयारी के काम को जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हो रहा है महसूस करते हैं? सब जिन्होंने प्रकाश को पाया है, जिनको नबूवत को पढ़ाने और सुनने का मौका मिल है, उन बातों पर ध्यान दें जो उसमें लिखी हैं, क्योंकि समय निकट है। कोई भी पाप के साथ जो संसार के हर दुख व कष्ट का स्रोत है हस्तक्षेप न करें। आलस्य और उदासीनता में अधिक देर तक न रहिए। आपकी आत्मा का भाग्य अनिश्चितता पर न लटका रहे। निश्चित रूप में जान ले कि आप परमेश्वर की ओर हैं या नहीं। सच्चे हृदयों और कांपते होठों से ये प्रश्न पूछिए, कौन ठहरने योग्य होगा? क्या आप अनुग्रह काल के इन अंतिम कीमती घड़ियों में अपने चरित्र भवन में सबसे उत्तम माल लगा रहे हैं? क्या आप अपनी आत्मा को हर एक दाग व धब्बे से स्वच्छ व शुद्ध कर रहे हैं? क्या आपने प्रकाश का अनुकरण किया है? क्या आपके विश्वास के इकरार के अनुसार आपके कार्य भी हैं? एक अधूरा औपचारिक विश्वासी होना संभव है, फिर भी हो सकता है कि तौल में कम निकले और अनंत जीवन हाथ से जाता रहे। संभव है कि आप बाइबल के कुछ उपदेशों का अभ्यास करें और मसीही जैसे समझे जाएं, फिर भी नाश हो जाएं, क्योंकि आप में मसीही चरित्र के लिए जरूरी गुणों की कमी रही। यदि आप उन चेतावनियों की ओर से लापरवाह रहें अथवा उनके साथ उदासीनता का व्यवहार करें, यदि आप अधर्म को पालें अथवा उसकी ओर से आनाकानी करें, तो आप अपनी आत्मा के भाग्य पर मुहर लगा रहे हैं। आप तराजू में तौले जाएंगे और कम जचेंगे। अनुग्रह, शांति और क्षमा सदा के लिए उठा लिए जाएंगे। यीशु भी ध्यान न देगा और आपकी प्रार्थनाओं व विनतियों की पहुँच के अंदर फिर कभी न आएगा। जबकि दया का दरवाजा खुला है और त्राणकर्ता मध्यस्थ काम कर रहा है, तो आइए हम अनंत काल के लिए पूरी तैयारी कर लें। शैतान सोया हुआ नहीं है, वह भविष्यवाणी के दृढ़ वचन को अप्रभावित करने को चौकन्ना बैठा है। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट की गई उसकी प्रत्यक्ष इच्छा के विरुद्ध वह चतुरता और धोखेबाजी से कार्य कर रहा है। वर्षों से शैतान सत्य का स्थान लेने को अपने अविष्कृत धूर्त मिथ्यावाद के द्वारा मानव बुद्धि पर नियंत्रण जमाए हुए है। ऐसे खतरे के समय धर्माचारी परमेश्वर के भय में दाऊद के शब्दों को दोहराते हुए उसके नाम की महिमा करेंगे। समय आया है कि यहोवा काम करें, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। भजन संहिता 119 आयत 126। एक कलीसिया लोक के नाते हम दावा करते हैं कि पृथ्वी के किसी दूसरे लोगों की अपेक्षा हमारे पास सबसे बढ़कर सत्य है। फिर तो हमारा जीवन व चरित्र ऐसे विश्वास के अनुकूल होना चाहिए। वह दिन हमारे ऊपर ही आ गया है जब धर्मी लोग स्वर्गीय खलिहान के लिए कीमती अनाज की भांति गट्ठा में बांधे जाएंगे और दुष्ट लोग कड़वे दानों की भांति आखिरी बड़े दिन की आग के लिए जमा किए जाएंगे। परंतु गेहूं और जंगली दाने कटनी लो दोनों एक संग बढ़ते हैं। जीवन के दायित्वों को पूरा करने में धर्मी लोगों को अंत तक अधर्मियों से संपर्क रखना होगा। प्रकाश के पुत्र अंधकार के पुत्रों के बीच छिटके हुए हैं, ताकि सब लोग अंतर देख सकें। यों परमेश्वर के पुत्र उसके गुणों का प्रचार करें, जिसने उन्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हृदय में चमकता हुआ ईश्वर का प्यार जीवन में प्रकट हुआ। मसीह का सा एक ये स्वर्ग की एक झलक दिखाएंगे, जिसके सौंदर्य को देखने और कद्र करने का सौभाग्य पृथ्वी के लोगों को प्राप्त होगा। कोई जन परमेश्वर की सेवा बिना दुष्ट लोगों और दूतों को अपने विरुद्ध संयुक्त कराए नहीं कर सकता। जो आत्मा मसीह की पंक्ति में शामिल होने की चेष्टा करती है, उसकी घात में दुष्ट आत्माएं लगाई जाएंगी, क्योंकि शैतान अपने हाथ से छूटे हुए शिकार को पुनः प्राप्त करना चाहता है। दुष्ट लोग भारी धोखों का विश्वास करेंगे कि वे दंड पावें। ये लोग यथार्थता का वस्त्र पहनेंगे और यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी धोखा देंगे। अंत निकट है। इस संसार को वापस लौटने में मसीह अधिक देर न करेगा। इस बात को हरेक संदेह का भूल विचार होना चाहिए। परमेश्वर का रोकथाम करने वाला आत्मा इस समय संसार से हटाया जा रहा है। आंधी, तूफान, अग्निकांड तथा बाढ़ समुद्रीय व स्थलीय एक दूसरे के बाद वेग से आ रहे हैं। विज्ञान इनके कारणों को समझने की कोशिश कर रहा है। हमारे इर्द गिर्द के समूह चिन्ह परमेश्वर के पुत्र के शीघ्र आगमन का परिचय दे रहे हैं। इन सब का असली कारण ना बताकर और ही कुछ बतलाया जाता है। लोग पहरेदार दूतों को पहचान नहीं सकते जो चारों हवाओं को रोके हुए हैं कि वे ना चलें जब तक परमेश्वर के दासों के माथों पर छाप न लग जाए। परंतु जब परमेश्वर अपने दूतों को हुक्म करेगा कि हवाओं को छोड़ दें, तो उस समय झगड़े का ऐसा दृश्य होगा जिसका कलम चित्रण न कर सकेगी। यदि हमारी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया जाता, यदि आप परमेश्वर के मनोरथ को जान सकते और दंडाज्ञाओं को जो एक दोषी संसार पर सुनाए जाएंगे सुन सकते, यदि आप उस समय अपनी स्थिति को देख सकते, तो आप अपनी आत्माओं और अपने साथियों की आत्माओं के लिए डरते और कांपते। उस समय हृदय विदारक दुख, भारी उत्साहपूर्ण प्रार्थनाएं स्वर्ग को पहुंचाई जाती। आप ओसारे और वेदी के बीच से रो रोकर अपने आध्यात्मिक अंधेपन तथा नैतिक पतन का इकरार करते। मसीह आने में विलंब करता है, इस ख्याल में खतरा। वह दुष्ट दास जिसने अपने मन में कहा था, मेरा स्वामी आने में विलंब करता है, मत्ती 24 आयत 48, अपने प्रभु के बाट जोहने का इकरार करता था। वह एक दास तो था जो बाह्य रूप में परमेश्वर की सेवा में संलग्न था, पर हृदय में वह शैतान का चेला था। हंसी ठट्टा करने वालों की भांति वह खुल्लम खुल्ला सत्य का इनकार नहीं करता, परंतु अपने जीवन से यही ख्याल प्रकट करता है कि प्रभु आगमन में विलंब है। ढिठाई उसको अनंत हितों की ओर से लापरवाह बना डालती है। वह संसार की नीति को ग्रहण करता है और उसकी रीति रिवाजों के अनुकूल चलता है। स्वार्थ, सांसारिक अभिमान व अभिलाषाएं उसके जीवन में प्रभुत्व रखते हैं। इस विचार से डरते हुए कि उसके भाई उससे ऊंचे पर आसीन होंगे, वह उनकी मेहनतों की निंदा और उनके इरादों का विरोध करने लगता है। इस तरह से वह अपने साथियों को मारने पीटने लगता है। जितना वह परमेश्वर के लोगों से दूर होता है, उतना ही अधिक वह अधार्मियों के साथ मिल जाता है। वह मतवालों के संग खाते पीते पाया जाता है, दुनियादारों के संग शामिल होकर उनकी भावनाओं में शरीक होता है। इस प्रकार उसको शारीरिक सुरक्षित में एरांति मिलती है और विसराहट, उदासीनता और आलस्य का दावा लेते हैं। तथाकथित नई रोशनी बहुतों को धोखा देगी। शैतान परमेश्वर के शेष लोगों को आम बर्बादी में लपेटने की आशा करता है जो पृथ्वी पर आने वाली है। मसीह का आगमन ज्यों-ज्यों निकट आता जाएगा, वह और भी दृढ़ और निश्चित रूप में कोशिश करेगा कि उनको उठा फेंके। पुरुष व स्त्रियां यह दावा करते हुए उठ खड़े होंगे कि उनके पास नई रोशनी अथवा कोई नया प्रकाशित वचन है जिसकी प्रवृत्ति प्राचीन विशिष्ट सिद्धांतों पर के विश्वास को उखाड़ने की होती है। उनकी शिक्षा परमेश्वर के वचन की कसौटी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। फिर भी लोग धोखा खाएंगे, झूठी झूठी खबरें उड़ाई जाएंगी और कुछ लोग इस जाल में फंस जाएंगे। वे इन गप को विश्वास करेंगे और अपने आप भी चर्चा करेंगे, यों एक श्रृंखला तैयार हो जाएगी जिससे वे सरदार धोखेबाज के साथ जुड़ जाएंगे। ये भावना परमेश्वर दत्त संदेशों की ओर सदा खुली चुनौती के रूप में प्रकट होगा। हर झूठी उक्ति इस अविश्वास का पोषण करती और उसकी बल देती है, और इस साधन द्वारा अनेक आत्माएं तराजू के उलट पलड़े में तोले जाएंगे। गलती की हर शक्ल के प्रति हम अत्यधिक चौकस नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान नित्य लोगों को सत्य से दूर करने की कोशिश में है। वैयक्तिक भक्ति का महत्व।
आज जब गुप्त प्रार्थना तथा धर्मशास्त्र के पढ़ने की अवहेलना की जाएंगी, तो कल विवेक की कम उलाहना के साथ उनको छोड़ दिया जा सकता है और छूट की सूची काफी बड़ी होगी। ये सब इसलिए कि हृदय की भूमि में केवल एक ही दाना अनाज का बोया गया था। दूसरी ओर प्रत्येक प्रकाश की किरण जिसका पोषण किया गया प्रकाश ही की फसल पैदा करेगा। यदि प्रलोभन का एक बार मुकाबला किया जाए तो दूसरी बार और दृढ़ता से प्रतिरोध करने की शक्ति मिलेगी। अपने ऊपर हर नई विजय प्राप्त करने द्वारा उच्च तथा उत्तम विजयों के लिए मार्ग सहज हो जाता है। हर एक विजय उस बीज की भांति है जो अनंत जीवन के लिए बोया गया। हर एक धर्मीजन जो परमेश्वर के पास सच्चे मन से आकर अपनी विनतियों को विश्वास के साथ पेश करता है, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करेगा। यदि आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं पाते या महसूस करते, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर से अपना विश्वास न हटाइए। परमेश्वर पर भरोसा रखने से न डरिए, उसकी इस दृढ़ प्रतिज्ञा पर भरोसा रखिए, मांगो तो पाओगे। यूहन्ना 16:24। परमेश्वर इतना बुद्धिमान है कि गलती कर ही नहीं सकता, और इतना दयालु है कि अपने संतों से जो खराई व सिधाई से चलते हैं कोई उत्तम वस्तु नहीं रोकता। मनुष्य गलती का पुतला है, और यद्यपि उसकी प्रार्थनाएं सच्चे हृदय से पेश की जाती हैं, तो भी वह हमेशा ऐसी वस्तुएं नहीं मांगता जो उसके लिए भली हैं अथवा जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। जब हालत ऐसी है तो हमारा सर्वज्ञ और दयालु पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, कभी कभी तुरंत। परंतु वह हमको वही वस्तु देगा जो हमारी भलाई और उसकी महिमा के वास्ते हैं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। यदि हम उसके इंतजाम को देख सकें तो हम स्पष्टता से देखेंगे कि वह जानता है कि हमारे लिए क्या क्या भला है, और यह भी देख लेंगे कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया गया है। कोई हानिकारक वस्तु नहीं दी जाएगी, परंतु वही आशीष जिसकी हमको आवश्यकता है उस वस्तु के स्थान में दी जाएंगी जो हमने मांगी थी, पर हमारे लिए उपयुक्त नहीं परंतु हानिकारक थी। मैंने देखा कि यदि हम अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत महसूस नहीं करते तो कम से कम अपने विश्वास को थामे रहें और संदेह को जगह न दें, अन्यथा हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यदि हमारा विश्वास डगमगाता है तो हम उससे कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। हमारा भरोसा परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए, और जब हमें आशीष की बड़ी आवश्यकता होती है तो उसी समय वह हमारे ऊपर बौछार की तरह गिरेगी। मसीही लोग स्वर्गीय बातों के बारे में सोचना तथा बात करना पसंद करते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर सब कुछ है, वहां पवित्रता प्रधान है। परमेश्वर के साथ ऐक्य को बिगाड़ने वाली कोई वस्तु नहीं है। यदि हम सचमुच में उस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो स्वर्ग की आत्मा को पहले यहां हमारे मन में वास करना चाहिए। परंतु यदि हमको स्वर्गीय विषयों के सोच विचार में यहां कोई आनंद नहीं आता, यदि हमें परमेश्वर के ज्ञान खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मसीह के चरित्र देखने में कोई हर्ष नहीं, यदि पवित्रता में हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं, तब हमको निश्चय जानना चाहिए कि हमारी स्वर्ग की आशा व्यर्थ है। मसीही पुरुष के सामने परमेश्वर की इच्छा की पूर्ण अनुकूलता का उच्च लक्ष्य नित्य रहना चाहिए। वह परमेश्वर के और यीशु के और परमानंद तथा पवित्रता के घर, जिसे मसीह ने अपने प्रेमियों के लिए तैयार किया है। जब आत्मा परमेश्वर के धन्य आश्वासनों का स्वाद लेती है तो इन प्रसंगों पर सोच विचार करने को प्रेरित ऐसा बतलाता है कि होने हारे जगत की शक्ति का स्वाद लिया जा रहा है। हमारे ठीक सामने उस महान वाद विवाद का अंतिम संघर्ष है, जब सब प्रकार के सामर्थ्य और चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ और अधर्म के सब प्रकार के छल के साथ शैतान परमेश्वर के चरित्र को इस गलत रीति से वर्णन करेगा कि हो सके तो चुने हुए लोगों को भी भरमावे। यदि किसी समय किसी संप्रदाय को स्वर्ग के विस्तृत प्रकाश की नित्य आवश्यकता हुई तो वे यही लोग हैं
जिन्हें इस जोखिम के समय परमेश्वर ने अपनी पवित्र व्यवस्था के धरोहर होने को और उसके चरित्र को संसार सन्मुख सत्य सिद्ध करने को बुलाया है। जिन लोगों को ऐसी पवित्र धरोहर सौंपी गई है, उनको उन सत्यों द्वारा जिन पर वे विश्वास करने का दावा करते हैं आत्मिक समुन्नता तथा जीवित होना चाहिए। परमेश्वर के लोग संदेह और डर की परवाह न कर आगे बढ़ते हैं।
परमेश्वर अब अपने लोगों के साथ जो वर्तमान सत्य पर विश्वास करते हैं व्यवहार कर रहा है। उसका विचार है कि महत्वपूर्ण परिणाम प्रकट करे, और जब वह दूरदर्शिता से इस मनोरथ को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है तो वह अपने लोगों से कहता है, यहां से कूच करो। ये सच है कि मार्ग अभी नहीं है, परंतु जब वे विश्वास और धैर्य के बल पर आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उनकी आंखों के सामने मार्ग स्पष्ट कर देगा। कुछ हैं जो प्राचीन इज़राइल की भांति शिकायत करेंगे और अपनी स्थिति की कठिनाइयों का दोष उन पर लगाएंगे, जिन्हें परमेश्वर ने विशेष अभिप्राय से अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उच्चासीन किया है। वे ये देखने में चूक करते हैं कि परमेश्वर उनको ऐसी तंग हालत में लाकर आजमा रहा है जहां से छुटकारा मिलना कठिन है सिवाय उसके हाथ के द्वारा। ऐसे समय आते हैं जब मसीही जीवन खतरों से व्याकुल हो जाता है और कर्तव्य निभाना कठिन हो जाता है। विचार शक्ति आगे आने वाली, नाश करने वाले और पीछे कैद तथा मृत्यु का चित्रण करती है, तो भी परमेश्वर की आवाज सारी निरुत्साही के मध्य स्पष्टता से कहती है, आगे बढ़ो, यहां से कूच करो। हमें इस आज्ञा का पालन करना चाहिए, नतीजा चाहे जो कुछ भी हो। यद्यपि हमारी आंखें उस अंधकार के पार न देख सकें और यद्यपि हमारे पांव ठंडी लहरों का अनुभव करें, बटे हुए निरुत्साह जीवन में संदेह तथा अंधकार पाए जाएंगे। आप न तो धार्मिक शांति का ही आनंद ले सकते हैं और न उस शांति का जिसे संसार देता है। शैतान की हाथ पर हाथ धरने की आराम कुर्सी में न बैठिए, परंतु उठकर उस उच्च स्तर का लक्ष्य लीजिए जिस तक पहुंचना आपका सौभाग्य है। मसीह की खातिर सबका त्याग करना एक विशेषाधिकार है। दूसरों के जीवन का आदर्श न लीजिए, न उनका अनुकरण करिए, अन्यथा उनसे ऊंचा न उठ सकेंगे। आपके सन्मुख एक ही अचूक नमूना है, केवल यीशु का ही पीछा करने में सुरक्षा है। यदि दूसरे किसी आत्मिक आलसी पुरुष के सिद्धांतों पर चलें तो निश्चय कर लें कि आप उन्हें छोड़कर मसीही चरित्र की ऊंचाई की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग के लिए चरित्र का निर्माण कीजिए, अपनी चौकी पर सो न जाइए। अपनी आत्मा के साथ विश्वस्तता तथा सच्चाई का बर्ताव कीजिए।